बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए दोनों का जयकार बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान और सद्गुरुदेव, दोनों की कृपा को प्राप्त किए बिना संसार से हमारा जय नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर कृपा तो है ही, गुरु कृपा तो है ही। ऐसे परमात्मा की कृपा, गुरुजनों की कृपा से हम लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय से। प्रथम अध्याय में बहुत बढ़िया ढंग से यमराज ने आत्मा का निरूपण किया, लेकिन ये बताया ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा छुप गया है, परमात्मा छुप गया है बुद्धि में। तो परमात्मा को ढूंढने के लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए यमराज ने बता दिया कि नचिकेता दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी। बुद्धि एकाग्र हो और बुद्धि स्वच्छ तीव्र हो, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें क्या प्रतिबंध है। तो प्रतिबंधक को समझना पड़ता है कि कौन प्रतिबंध है, बाहर है कि अंदर है, ये पता लगाना पड़ता है। घर में चोरी हो गई तो पता लगाना पड़ता है कि चोर बाहर का है कि अंदर का है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहां पर लिखा है भाष्य में, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारण तत्पनोजनाय यत्न आरधुम शक्यते न अन्यथा। श्रेय मार्ग में हम चल रहे हैं, कोई अभ्युदय मार्ग नहीं है ये प्रेमपुरी आश्रम का जो है ये मार्ग जो है ना श्रेय मार्ग है, अभ्युदय मार्ग नहीं है। कोई स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए यहां नहीं आ रहे हैं। श्रेय जो मोक्ष है ना, श्रेय मोक्ष को बोलते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं सब, लेकिन प्रतिबंधक क्या है उसको जाने बिना उसको हटाने के लिए प्रयत्न कैसे करेगा। इसलिए ये द्वितीय अध्याय है कि प्रतिबंधक को पहचानने के लिए है, समस्या को पहचानने के लिए है। तो जितने भी इस मार्ग में हमारे पास समस्याएं आ रही है, समस्याओं का समाधान बाहर नहीं है। इसलिए बाहर यदि ढूंढेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि समस्या हमारे अंदर है। मान लो कि घर में कोई महात्मा हो और कपड़े सिलाई कर रहा है सुई से, और सिलाई करते करते सुई गिर गई जमीन पर और ढूंढ रहा है। कहां पर जाकर ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही है सुई, परेशान हो गया। किसी ने आकर के पूछा भी क्या ढूंढ रहे हो? सुई ढूंढ रहे हो। तो वो भी ढूंढने लगा, उनको भी नहीं मिल रही है। फिर पूछा भी आपने गिराया कहां पर? नहीं, गिरी तो कमरे में, लेकिन कमरे में गिरी है तो कमरे में ढूंढ तब ना मिलेगी। इसी प्रकार जो है समस्या कहां पर है? बाहर नहीं, समस्या तो अपने अंदर है। तो अपने अंदर जो समस्या है तो समस्या का समाधान भी अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अंदर जो ज्ञान हमारा गलत हो गया है ना, समझ, इसलिए हमको लगता है कि बाह्य पदार्थ हमको दुख दे रहा है। बाह्य पदार्थ कभी दुख नहीं देता है, अपना जो अंदर का अज्ञान है, नहीं समझ पा रहे हैं कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। इसलिए बाहर समस्या को ढूंढने के लिए यात्रा हो रही है अज्ञानी की, अनंत काल से ये बाहर की यात्रा चल रही है, बाहर की, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत ये बाहर की यात्रा है, ये अंदर की यात्रा नहीं है। तो यहां आकर के जब वेदांत सुनते हैं, ये यात्रा कौन सी है? हाँ, ये अंदर की यात्रा है। इसलिए यहां पर अंदर की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए द्वितीय अध्याय, ये समझ लो। जब समस्या को ढूंढने लगेगा अंदर, तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब अंतर्मुखी साधक होता है तो समस्या भी पता लग जाता है, समस्याओं का, और जब समस्या का पता लगता है, समस्या का समाधान भी हो जाएगा विचार करने पर। और समस्या का मूल जो है अज्ञान, उसका ही पता लग जाएगा, और जो सबका अधिष्ठान परमात्मा है उसका ज्ञान भी हो जाएगा, मूल अज्ञान की निवृत्ति भी हो जाएगी। इसलिए यहां पर अंतर्मुखी होकर के समस्या का समाधान को ढूंढना चाहिए, ये बात यहां पर जमराज जी बता रहे हैं नचिकेता को। इसलिए पूर्वार्ध में श्रुति ने बोल दिया, ये जो हमारी इंद्रिया है ना, बाहर के फोटो खींचती रहती है, अंदर की फोटो को नहीं खींच पा रही है। बहुत समझाया परमात्मा ने, जब नहीं समझा तो उसको बाहर कर दिया इंद्रियों को, जाओ बाहर ही तुम फोटो खींचते रहो। इसलिए परांग पश्यति, बाहर को ये देखती रहती है, बाहर के फोटो को खींच करके कहां पर रखती है? अंतकण में रखती है, अंतकण, वो रील बना है, सब अनंत काल से रील बना है अंतकण में। इसलिए न अंतरात्मन कहा, परमात्मा को जान नहीं पाती है इंद्रिया। इसलिए क्या करना चाहिए कि नचिकेता, सबसे पहले तुमको धीर बनना पड़ेगा। ये जो मंत्र है ना, बहुत ध्यान देने का है, और यही वास्तविकता है, सच्चाई यही है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करने पर ही साधक आगे बढ़ता है, सच्चाई को झुठलाने पर नहीं होता है। अपने में अभिमान है तो स्वीकार करना चाहिए, अभिमान है। अपने में अज्ञान है तो स्वीकार करना चाहिए, अपने में अज्ञान है। लेकिन कोई अपने आप को अज्ञानी नहीं समझता है। संसार में जितने भी प्राणी है, जिसका शरीर प्राप्त हुआ है, सब अज्ञानी है कि नहीं? सब मूर्ख है कि नहीं? अरे हम लोग भी मूर्ख ही है। अरे भाई, मूर्ख नहीं होते, चाहे वेदांत सुन लो चाहे वेदांत ना सुना हो, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है सब मूर्ख ही है। बाहर जब दौड़ रहे हैं सब मूर्ख ही है। आनंद, असली आनंद अपने अंदर है, और बाहर जो है खाने पीने में ढूंढ रहे हैं, विषय में, तो मूर्ख हुआ कि नहीं? तब सब मूर्ख ही है ना। मूर्ख यदि न होता तो शरीर को प्राप्त क्यों करता है? इसलिए ज्ञान उसी को होता है, उस शिष्य को ज्ञान होता है जो अपने आप को मूर्ख, अज्ञानी, अल्पज्ञ समझता हो, उसी को ज्ञान होता है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। तो देखो जमराज जी बोलते हैं कि धीर बनना पड़ेगा, धीर धीर सबको सहना पड़ेगा। कल भी आप लोगों को बता दिया कि वेदांत की जो साधना होती है 24 घंटे की होती है। ऐसा नहीं कि सुबह एक घंटा जो है सुन लिया, शाम को एक घंटा सुन लिया, बाकी समय नहीं, ऐसा नहीं। खाते समय पीते समय सब समय जो है आपको धीर बनना पड़ेगा। तो कैसे धीर बनना पड़ेगा? आप जो है आप दृष्टा भाव में रहिए। आत्मा का स्वभाव होता है दृष्टा भाव, देखना अपना स्वभाव है। जागृत में भी आप देख रहे हो, परमात्मा भी सामने खड़े हो जाएंगे तो देखेगा कौन? आप ही देखोगे। और दिखेगा कौन? परमात्मा दिखेगा। इसलिए परमात्मा का दर्शन होने पर भी आप दृष्टा ही रहेंगे, कभी आप दृश्य नहीं हो सकते। तो सपनों में जाते हो तो वहां पर भी आप दृष्टा ही बनते हो, और सुषुप्ति में जाते हो तो वहां पर भी आप जड़ नहीं होते हो, वहां पर भी आप चेतनी होते हो, देखने वाले ही होते हो। इसलिए आपका स्वभाव देखना है, दिखना नहीं। इसलिए आप अपने स्वरूप में आप रहिए दृष्टा भाव में, तो संसार का कोई भी पदार्थ आपको पकड़ नहीं सकता है, आपको विक्षिप्त नहीं कर सकता है। आप यदि अपने स्वभाव से नीचे उतरे तो पकड़े जाओगे। मान लो कि लड़ाई हो रही है दो व्यक्ति में, है ना? आप उसको देखते रहो, लेकिन एक पक्ष का लोगे ना तो पकड़े जाओगे। इसको भी देखो और उसको भी देखो। अरे भाई, आप एक पक्षधर होंगे तब तो पकड़े जाओगे ना। भगवान इसलिए पक्षधर नहीं होते हैं, किसी एक पक्ष का नहीं लेते हैं। देखो, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता? चक्रधर बोला जाता, पक्षधर नहीं बोला जाएगा। इसलिए चक्र के चारों तरफ समान ही होता है। इसलिए यहां पर बोलते हैं सर्वदा आप दृष्टा भाव में यदि रहोगे तो धीर बन पाओगे। इसलिए मान लो कि अभी अनुभव में घटाओ, मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, है ना? यदि मैं अपने आप को दृष्टा न समझूं, है ना? और मैं क्या समझूं? मैं वक्ता समझूं, है ना? व्यासपीठ में बैठ करके मैं सुना रहा हूं, ऐसा यदि समझता हो तो वो अपने स्वभाव में नहीं रहा। आप ध्यान दे करके सुनो। मैं यदि अपने आप को वक्ता समझता हूं और आप लोगों को श्रोता समझता हूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा निश्चित। तो ऐसा मैं समझू तो एक के प्रति राग हो जाएगा और एक के प्रति द्वेष हो जाएगा। मान लो कि मेरे प्रति कोई माला चढ़ा रहा है, है ना? तो उसके प्रति राग हो जाएगा, और जो माला नहीं चढ़ा रहा है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। कोई बढ़िया से सुन रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूं, अरे ध्यान से सुनता नहीं है, ध्यान से सुनता नहीं। आप अपने स्वभाव में रहो, नीचे मत उतरो। इसलिए जो बढ़िया ध्यान से सुन रहा है उसको भी देखो, और जो ध्यान से नहीं सुन रहा है उसको भी देखो। तो जो झपका लगा रहा है उसको भी देखो, जो पुस्तक देख करके वेदांत को सुन रहा है उसको भी देखो। आप दोनों का देखो, किसी एक को नहीं देखना है। इस पर अगर आप भी ऐसा करेंगे व्यवहार के समय, जो आपकी स्तुति करता है उसको भी देखो आप अपने को दृष्टा समझ करके, उसको दृश्य समझ करके, और जो आपकी निंदा करता है उसको भी देखो। तो ऐसा करेंगे तो हर समय आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, व्यवहार करते समय भी, खाते समय भी, पीते समय भी, दृष्टा भाव में रहने पर। इसको कहा जाता है धीरह, और इसी का नाम क्या है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं विवेकी। तो आप दृष्टा भाव में रह करके विवेकी बन सकते हो, तब जा करके परमात्मा का स्वरूप क्या है उसका आप चिंतन कर सकते हो। इसलिए भगवान ने भी कहा देखो, अब अनुकूलता को भी देखो, प्रतिकूलता को भी देखो, जो आने वाली चीज है उसको भी देखो, जाने वाली चीज है उसको भी देखो। आगमा पायनो नित्यान तान तिथिक्षस्व भारत, देखो ये सब आने वाले जाने वाले है। जैसे सपना के पदार्थ आता है और उड़ने के बाद चला जाता है, इसी प्रकार पहले जो बाल्यावस्था आई वो कहाँ रही, चली गई, हो गई कि नहीं, और युवावस्था आई वो भी चली गई, लेकिन आप जाने वाले, आने वाले जाने वाले नहीं। इसी पर अनुकूलता भी आ जाएगी, प्रतिकूलता भी आ जाएगी, आप दोनों को देखते रहो। हाँ, किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है, शरीर के साथ संबंध बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा, जीव भाव में आ जाओगे, दृष्टा भाव में नहीं आ सकते। ये तो व्यवहार के समय कैसे परमात्मा का भजन करना चाहिए, अपने आप को क्या समझना चाहिए, ये बात बता दिया कि कश्चित धीरह। अच्छा, तो धीरह से पहले यहां पर लिखा है कश्चित, मतलब कोई कोई संसार में धीर बन सकता है, सब नहीं बन सकते। इसलिए आप लोग सुनते हैं कि गीता में भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध है, परमात्मा का भजन करने के लिए कोई कोई होता है, कोई कोई, सब लोग नहीं होते, प्रयत्न करता है बोल दिया। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यक्ति तत्वतः, जो परमात्मा का भजन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं उनमें से भी कोई कोई मुझे जानता है, बड़ा कठिन काम है, सब लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए कश्चित शब्द। इसलिए संसार में रह करके दृष्टा भाव में रहना हो, नीचे न उतरना, नीचे उतरना मतलब नीचे क्या है, शरीर, आप शरीर से भिन्न हो, ये हो गया स्वरूप, और नीचे उतर के मतलब शरीर में तादात्म्य कर लिया। तो शरीर में आप तादात्म्य कर लेंगे तो स्वरूप से उतर गए आप, और स्वरूप से उतर गए तो ये शरीर जो है ना अपना गुण धर्म दिए बिना छोड़ेगा नहीं, आप चाहो अथवा ना चाहो। आप कचड़े खाना के बैठोगे तो आपके ऊपर कचड़ा तो लोग फेंकेंगे ही फेंकेंगे, कितना भी स्वच्छता का अभियान चलाते रहे प्रधानमंत्री जी, है कि नहीं, आप कचड़े खाना में बैठोगे तो जरूर फेंकेंगे, आपके ऊपर फेंक रहे हैं आप बोलोगे क्यों फेंकते हो, आप बैठो मत। इसी वजह शरीर जो है कचड़ा खाना हो गया, शरीर में हम बैठेंगे, शरीर को यदि मैं मानेंगे तो शरीर का गुण धर्म तो आएगा ही आएगा, शरीर गोरा है तो आप भी अपने को गोरा समझोगे, शरीर काला है तो आप भी अपने आप को काला समझेंगे, लेकिन आत्मा ना गोरा है न आत्मा काला है। इसलिए यहां पर बोल दिया ये दृष्टा भाव में रहना ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, इसलिए बोल दिया कश्चित धीर, और इसलिए भी कश्चित कहा कि कोई भी हो सकता है धीर, इसका दो अर्थ है। कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई महात्मा सन्यासी ही धीर बन सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे भगवान का भक्त कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि ब्राह्मण ही बन सकता है परमात्मा भक्त, ऐसे नहीं राक्षस भी बनते हैं कोई कोई, असुर जी ने प्रहलाद आदि भी है ना। ऐसे नहीं कि पति ही भगवान का भक्त बनता है, पत्नी नहीं बन सकती, ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से संसार में धीर बनना कोई भी हो सकता है, किसी वर्ण का, किसी भी आश्रम का, किसी भी जाति का वो बन सकता है। क्या चाहिए? अधिकार चाहिए, बस योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? विचार। आप यदि विचार करते हो तो आप दृष्टा भाव में रह करके संसार में धीर भाव बन सकते हो। तो ध्यान दीजिए कि एक साधन हो गया धीर। संसार में परमात्मा का भजन करना हो तो पहले धीर बनना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक साधन बताते हैं। ये तो व्यवहार के समय धीर बनना पड़ेगा, लेकिन आप जिस समय साधन अवस्था में बैठोगे, भगवान का जप कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, उस समय तो धीर बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उस समय क्या करना होगा? तो बोल दिया आवृत चक्षुर। चक्षु से केवल चक्षुर इंद्रिय नहीं, सभी इंद्रियों को ले लो। तो व्यवहार के समय ये जो फोटो खींच करके रखी है ना इंद्रियां, बढ़िया बढ़िया रूप, बढ़िया बढ़िया रस, तो फोटो इंद्रियां खींच रही थी काहे के लिए? व्यवहार के लिए। लेकिन व्यवहार के समय जो इंद्रियां फोटो खींच रही है, उस समय तो आप दृष्टा भाव में रहे, इसलिए इंद्रियां फोटो खींचने पर भी कोई समस्या तो है ही नहीं। लेकिन जिस समय आप भजन करेंगे परमात्मा का, उस समय क्या करना होगा? इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। इसलिए कहते आवृत चक्षु, इंद्रियों के ऊपर ढक दो। जैसे कैमरा खींचती है ना फोटो को, कैमरा के ऊपर कुछ कपड़ा ढक दो, ढक्कन लगा दो, तो कैमरा रहने पर भी फोटो नहीं आ सकती है ना। इसी बार इंद्रिय को समट लो, बंद कर दो, मार्ग बंद कर दो, है ना। नहीं तो आप बैठोगे जो पहले के जो फोटो है ना रील बन करके, उसका जो स्मरण हो जाएगा, मनोराज्य हो जाएगा, है ना। इसलिए मनोराज्य ना हो, इसलिए जो है इंद्रिय को रोक दिया। और एक बात बताते हैं, ठीक है परमात्मा का भजन करते हैं, लेकिन अनादि काल से जो संस्कार पड़ा है, वो संस्कार तो अंतकरण में है ही। परमात्मा का चिंतन करोगे अंतकरण से, लेकिन अंतकरण में जो संसार का जो संस्कार पड़ा है, बढ़िया बढ़िया चीज खाए हैं पिए हैं, उसका मनोराज्य तो हो ही जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो समझना चाहिए कि यदि इंद्रियों को समटने पर भी अपना मन परमात्मा में भजन में नहीं लग रहा है, समझ लो कि मन अभी कहीं ना कहीं से रस खींच रहा है। क्या कर रहा है? रस रस खींच रहा है। और अनेक प्रकार का रस होता है, खाने पीने का रस नहीं समझना है, है ना। कोई आपको डांट रहा है तब भी उसमें आपको कभी कभी अच्छा लगता है, कोई की आपकी स्तुति करता है, माला चढ़ाता है, कोई कोई आपको मान सम्मान दे रहा है, संसार में आपका जय जयकार हो रहा है, उससे मन को बड़ा आनंद मिलता है, रस मिलता है। तो परमात्मा में यदि हमारा मन नहीं लग रहा है, भजन में नहीं लग रहा है, तो समझ लो कि अभी अमृतत्व की इच्छा नहीं है ठीक से। तो जिसके कारण परमात्मा के भजन में हमारा मन नहीं लग रहा है उस कारण को ढूंढो। वो कारण क्या है? संसार का जो रस हो रहा है नाश समझ से, उसको पहले तुम समझ लो। तो कैसे समझेंगे? संसार का पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। परीक्षण में यदि कमजोरी, जैसे नचिकेता ने सब परीक्षण कर लिया यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत, सब अनित्य है, इससे वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वैराग्य सबसे पहले होना चाहिए। इसलिए परीक्षा लोकान कर्मचितन मूला। तो इसी बात को यहां पर जमराज ये बताते हैं, तुम अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करो। अमृतत्व की इच्छा ये तीव्र हो जाएगी ना, ये परमात्मा में मन झट से लग जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मन के दरवाजा है ना, समझ लो तीन है। तीन मन के दरवाजा कितने हैं? हाँ, इस बात को समझ लो ठीक से। इसी मंत्र के ऊपर ज्यादा हम जोर दे रहे हैं। तो मन के दरवाजा तीन है। एक दरवाजा तो संसार की ओर है, रूप रस गंध इसके ऊपर है। उस दरवाजा को सबसे पहले रोकना पड़ेगा। तो कैसे रोकेंगे? बता दिया कि कश्चित धीर है ना। आप धीर बनोगे, क्या नित्य है क्या अनित्य है समझ करके आप धीर बन जाओ, विवेकी बन जाओ, तो मन नहीं जाएगा बाहर। एक दरवाजा को आपने रोक दिया और दो दरवाजा बाकी है, हो गया ना। दो दरवाजा बाकी है तो दो में से क्या है एक, तो अनुभव में लेना है। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि वेदांत को अनुभव में करते जाओ। तो दरवाजा ये है, मन तो बाहर नहीं जा रहा है, मनोराज्य भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है, परमात्मा के भजन में यदि इच्छा ना हो तो मन कहां जाएगा? गाढ़ नींद में चला जाएगा। कभी कभी निद्रा आ जाती है, निद्रा आ जाती है, समझेगी नहीं। जैसे अनुभव में ले लो, कोई पुस्तक लेकर के आ रहा है यहां पर, है ना, सब आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, नींद भी बढ़िया आ रही है, रात में आई है, सब ठीक है, कोई बीमार नहीं है। यदि वेदांत को सुनने में आपकी इच्छा ना हो तो मन कहां जाएगा भाई? निद्रा में जाएगा कि नहीं? झपका लगेगा कि नहीं बोलो, है ना, झपका जरूर लग जाता है, है ना। तो इसलिए मन का एक घर हो गया, एक दरवाजा हो गया, कौन? निद्रा, सुषुप्ति जिसको बोलते हैं। गाढ़ नींद में चला जाता है, बैठे बैठे चला जाता है। इसी प्रकार जब हाथ में माला तो है, मन चला जाता है सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में चला जाता है। इसलिए उस दरवाजा को रोकेंगे, तो उस दरवाजा को कैसे रोकेंगे? तो बता दिया अमृतत्वम इच्छन। ये देखो, तुम अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा करोगे ना, तो निद्रा में नहीं जाएगा। इसलिए अनेक बाधाएं आती है, एक प्रकार की बाधा नहीं है, अनेक प्रकार की बाधाएं आती है संसार में परमात्मा का भजन करना हो। आप हिमालय में जाओगे, बढ़िया बढ़िया मनोरम दृश्य रहता है, फूलों की घाटी आप लोग सुने होंगे, बढ़िया बढ़िया फूल वहां पर होते, और पैदल जा रहे हो पहाड़ के ऊपर तो ऐसा मनोरम दृश्य होता है कि थोड़ा सा बैठ जाओ यहां पर, थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो बैठ जाओगे तो वहां पर नशा चढ़ जाती है। हाँ, वहां पर फूल होते हैं ना, फूल की जो सुगंधी होते हैं ना, वो सुगंधी जो नशीली होती है, तो नशा चढ़ जाएगी भाई। आप बैठ जाओगे तो वहां पर, तो नशा चढ़ जाएगी तो आप सो जाओगे, लेट जाओगे, और लेट जाओगे तो रात में बर्फ पड़ जाएगी तो लेटे ही रह जाओगे, फिर सुबह नहीं उठ पाओगे, फिर बर्फ पड़ जाएगी ना। इसी प्रकार बढ़िया बढ़िया मनोरम दृश्य संसार में आएंगे तो बाहरी मनोरम दृश्य है, नशा चढ़ जाता है, और गारनिधि में जाते वहां पर भी रस मिलता है। इसलिए दो दरवाजा को रोकना पड़ेगा, पहले तो विवेक वैराग्य से बाहर के दरवाजा को रोको तो मन बाहर नहीं जाएगा। फिर भी यदि भजन में इच्छा न हो परमात्मा के भजन में तो मन चला जाएगा गारनिधि में। इसलिए हमको तो परमात्मा का भजन ही करना है। ऐसी यदि तीव्र इच्छा हो आप अनुभव में ले लो, जैसे आप एक दिन सोए भी नहीं है, है ना, फिर भी यदि आपको गाड़ी पकड़नी है 3 बजे, फ्लाइट पकड़नी है, तो नींद नहीं आती है। देखो क्यों नहीं आती, हमको तो जाना ही है। हाँ, इसी प्रकार हमको तो प्रेमपुरी आश्रम जाना ही है, इसलिए सुबह आप तैयारी करके आ जाते हो, है ना। इसलिए द्वितीय साधन हो गया कि अमृतत्वम इच्छन, नहीं तीसरा, एक तो साधन हो गया धीर्य, दूसरा साधन क्या होगा आवृत चक्षु, इंद्रियों को रोकना है, और तीसरा जो महत्व का साधन होगा अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की तुम इच्छा करो। इसलिए आप कथा जानते हैं, वेदांग में कथा आती है ना, याज्ञवल्क और मैत्री की कथा आती है, तो कथा तो आपको नहीं सुनाएंगे लेकिन सारांश ये बताते हैं। तो उनके दो पत्नियां थी याज्ञवल्क जी, बड़े विद्वान थे, भगवान सूर्य की उपासना करके, भगवान सूर्य को गुरु बना करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, बड़े विद्वान थे, शास्त्र में शास्त्रार्थ में किसी से हारे नहीं, बड़े विद्वान थे। तो उनकी जो है दो पत्नियां थी, एक तो मैत्रेयी थी और दूसरी क्या है कात्यायन थी, है ना। तो ये जो कात्यायन है हाँ, वो तो सब व्यवस्था देखती थी गुरुकुल की, गुरुकुल सब व्यवस्था थी, जो व्यवस्था में जो पढ़ता है ना ज्यादा, उनकी रुचि नहीं होती है ज्ञान में, ज्ञान में रुचि ज्यादा नहीं होती। लेकिन वो साथ में जाती थी कौन, मैत्रेयी, शास्त्रार्थ में साथ में जा जा करके उनको भी थोड़ा सा वैराग्य हो गया था, इसलिए उनके पास संपत्ति बहुत थी। जब संन्यास, ब्राह्मण तो थे ही शरीर में, इसलिए हमको संन्यास ग्रहण करना है लेकिन पत्नी की आज्ञा चाहिए, ध्यान में रखो, बिना आज्ञा से घर छोड़ करके पति को नहीं जाना चाहिए संन्यास में, जब तक पत्नी की आज्ञा ना हो। इसलिए संपत्ति है, संपत्ति का बंटवारा करना है, काहे के लिए सारा झगड़ा जो है ना, झगड़ा का मूल कौन है, संपत्ति है। इसलिए जाने से पहले ही इसका बंटवारा कर दो, दो पत्नी को बुलाए, एक है मात्रेयी, दूसरी कौन है कात्यायन। तो कात्यायन को तो धन दे दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। लेकिन जब मैत्रेयी को दिए धन, तो मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, आप जा तो रहे हो संन्यास के लिए, इसलिए कुछ पूछ लूं आपसे, उसके बाद तो किसी से नहीं पूछ पाऊंगी। तो कहा कि पूछो भाई, ये जो आप धन दे रहे हो, इस धन से जब यदि हम खरीदना चाहें अमृतत्व को, तो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। याज्ञवल्क खड़े थे, बैठ गए, तो कह दिया कि अमृतत्व की तुम आशा ही मत करो धन से, अमृतत्वम तो नासास्ति वित्ते न, वित्त हो गया संपत्ति, संपत्ति से मिलना तो बहुत दूर है अमृतत्व, उसकी तुम आशा ही मत करो, न आशास्ति वित्ते न। भैया आशा ही नहीं करनी चाहिए, फिर काहे के लिए दे रहे हो, फिर ये नाहम नामृतस्याम केनहत केनत अहम कुरियम, उस धन का मैं क्या करूं। देखो ऐसा क्यों कहा, वो बोल सकती है जिसके पास जो है वैराग्य हो, जिसको मालूम हो गया है कि संसार से वास्तविक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा जिसको परोक्ष ज्ञान भी हो गया हो वही बोल सकता है, वही बोल सकती है। इसलिए यहाँ पर भी बोल दिया, देखो अमृतत्वम इच्छन, तीन साधन को यहाँ पर जमराज ने बताया। एक तो हो गया व्यवहार काल में धीर बनना पड़ेगा, खाते समय पीते समय मैं दृष्टा हूं, और जो साधन अवस्था आएगी जप करते समय ध्यान करते समय उसमें क्या करना पड़ेगा, आवृत चक्षु हो गया ना, और आवृत चक्षु होने पर ही मनोराज्य करेगा, नहीं तो निद्रा में चला जाएगा मन, है ना। इसलिए उस मार्ग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमृतत्व इच्छा, अमृतत्व को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होगी तो मन नहीं जाएगा सुषुप्ति में, वो भी एक दरवाजा, दो दरवाजा बंद हो गए भी एक दरवाजा खुला रह गया, वो दरवाजा कौन है, वो दरवाजा कौन होगा, विचार करके बोलो कौन होगा वो। एक दरवाजा भाई बाहर की ओर संसार की ओर, एक दरवाजा है गाढ़ नींद है, है ना, तीसरा दरवाजा कौन सा है। अरे भाई तीसरा दरवाजा है परमात्मा, अब अनुभव में ले रहे हो ना, तीसरा दरवाजा कौन होगा, परमात्मा ही होगा ना, दूसरा कौन होगा भाई। एक दरवाजा क्या है, संसार बाहर संसार हो गया, दूसरा दरवाजा कौन है, गाढ़ नींद सुसुप्ति, तो तीसरा दरवाजा कौन होगा, तो कहाँ जाएगा मन, मन तो परमात्मा की ओर ही जाएगा, वो उनको जाना ही पड़ेगा। क्यों, मन जो है ना बिना विषय के नहीं रह सकता है, मन किसी ना किसी आलम्बन किए बिना नहीं रह सकता है, इसलिए मन को विषय चाहिए। तो एक विषय तो हो गया भाई बाहर, उसको भी आपने रोक दिया है, और अमृतत्व की तीव्र इच्छा हो, भजन करने की तीव्र इच्छा हो तो गणित में नहीं जाएगा, और कहाँ जाएगा वो, परमात्मा में जाएगा वो, हो गया कि नहीं। इसलिए इसको कहते हैं तरकीब, तरकीब उपाय, हो गया ना। इसलिए गुरुपाद ने कहा उपाय न तो निघृण्या विक्षिप्तम काम हो गयो, उपाय न, उपाय क्या है, विवेक वैराग्य अमृतत्व की इच्छा, इस उपाय के द्वारा मन को आप रोक सकते हो। तो तीन साधन हो गया। तो यहां पर भगवान भाष्यकार तो लिखे हैं, ये जो बोल दिया कि प्रत्येक आत्मा नम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का दर्शन करता है, तो भाई इसको आत्मा क्यों बोलते हो, आत्मा क्यों बोलते हो, तो इसके बारे भगवान भाष्यकार ने लिखा है, एक श्लोक लिखा है, आप लोगों को बता देते हैं। भाष्य में लिखा है यच्चाप्नोति यत आदत्ते यच्चाति विषयान इह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। इसलिए इसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान कराना है, इस शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य होता है। इसलिए किसी भी शास्त्र में चार प्रकार के कथन होते हैं, चार बातें को बताता है, ये समझ लो। भगवान व्यास ने योग सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखा है, उस योग सूत्र का भाष्य को कहते हैं व्यास भाष्य, व्यास भाष्य है। उसमें लिखा है भगवान भाष्यकार ने, व्यास जी ने, यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम ही दर्शनम हेयम हानम उपायश्च चतुर्थो मोक्ष उच्यते। चिकित्सा शास्त्र हो गया आयुर्वेद शास्त्र, हाँ आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र, उसमें जैसे चार प्रकार का कथन है, चार बातें को बताता है चिकित्सा शास्त्र, पांचवा कुछ नहीं है। क्या क्या है? एक हो गया रोग, रोग रोग हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो वास्तविक यदि अच्छा डॉक्टर हो तो पहले क्या खोजेगा, रोग क्या है। ऐसा नहीं कि बिना देखे दवाई लिख देगा, ऐसा नहीं, पहले नाड़ी को देखना पड़ता है ना। तो रोग क्या है, इसमें बुखार आया, बुखार क्यों आया, बुखार का हेतु क्या है, हो गया ना। सर रोग हो गया, कौन सा रोग, और रोग किस लिए आया। पहला हो गया रोग, कौन सा रोग है, बुखार है कि क्या है, हो गया ना। और बुखार का रोग का हेतु क्या है, दो हो गए, रोग रोग हेतु हो, दो हो गए। और उसके बाद जो है दवाई, रोग निवृत्ति का हेतु, रोग निवृत्ति का हेतु क्या है उसको ढूंढना पड़ता है, किस दवाई से रोग की निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए रोग निवृत्ति हेतु तीसरा हो गया। और उसका पथ्य पालन करोगे, दवाई सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, भेषज्यम, आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा हो गया आरोग्य, चार बातें हो गई। देखो रोग, रोग हेतु, रोग निवृत्ति हेतु, पांचवा क्या है आरोग्यम, आरोग्य तुम छोड़ जाओ, स्वस्थता। ठीक इसी प्रकार ये वेदांत शास्त्र भी हो, कोई भी शास्त्र हो, चाहे भागवत हो, गीता हो, कोई भी हो, इसमें चार बातें कथन है, हेयम हानम उपायश्च, चतुर्थो मोक्ष उच्यते। इसलिए है या कौन है, किसको छोड़ना चाहिए, छोड़ने योग्य कौन है, छोड़ने योग्य हो गए संसार। अरे भागना ये नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, वेदांत में कहीं भागना नहीं पड़ता, हो गया ना। हम लोग भी भागे हुए हैं तो कहां पर, फिर भी संसार में ही है, कहां है, आश्रम भी संसारी, ये भी संसारी है, तो भागोगे तो कहां भागोगे, है ना। तो पहला हो गया हेयम, मतलब संसार, मतलब संसार के प्रति आसक्ति नहीं करनी चाहिए, इसको कहा जाता है छोड़ना, आसक्ति का अभाव। तो हेयम हो गया संसार, है ना, और हानम संसार की निवृत्ति हो गया ना। और कैसे निवृत्ति होगी, उपाय चाहिए, उपाय, किस उपाय को हम अपनाने पर इसको हम छोड़ सकते हैं, ये हुआ उपाय, हेयम हानम उपायश्च। यदि उपाय को अपनाएंगे, है ना, केवल विवेक करना चाहिए, धीर बनना चाहिए, बोलने से कोई धीर नहीं होता है, लेकिन अपनाना पड़ेगा। जैसे औषधि, औषधि अब रट रहे हो, है ना, तो रटने मात्रा से रोग नहीं जाएगा, है ना, औषधि का सेवन करना पड़ेगा और पथ्य का ही पालन करना पड़ेगा, है ना, ईश्वर वेदांत सुनना पड़ेगा और नियम से आपको रहना पड़ेगा, हो गया ना, तब तो ज्ञान होगा। इसलिए हेयम हानम उपायश्च, चतुर्थो मोक्ष उच्यते, चौथा क्या हो जाएगा, मोक्ष। इसलिए यहां पर भी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान ही संसार निवृत्ति का हेतु, दुख निवृत्ति का हेतु। तो आत्मा कैसा है, तो भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर लिखा है, यत आपनोति, संसार में जो सबको व्याप्त करता है उसको कहा जाता है आत्मा। आत्मा संसार को सबको व्याप्त करके रखा है, ये आपनोति हो गया, है ना, जिसने संसार को पैदा किया है वही संसार को व्याप्त करके पालन करके रखता है, परमात्मा हो गया। और समय आने पर अपने में समेट लेता है, भी समझ लेता है, ये संसार का लय हो जाएगा परमात्मा में। इसलिए यतोवा ये माने भूता न जानते, ये न जाता न जीवंत, यत प्रयंती अभिशम विशंत, जिसमें लय हो जाएगा, जिसमें संसार का लय हो जाता है उसको कहते हैं आत्मा, आत्मा हो गया, ये दूसरा अर्थ हो गया है ना। इसलिए भगवान भाष्यकार ने लिखा है यद आदत्य इति आत्मा, है ना, जो सबको अपने में लय कर लेता है उसको कहते हैं आत्मा, इसलिए परमात्मा वो अपना स्वरूप है। लेकिन वही जीव बन करके भोक्ता भी हो जाता है, जीव बन करके भोक्ता हो जाता है, इसलिए बोल दिया तीसरा अर्थ यत अति, अति मतलब जो भोक्ता हो जाए, भोग करता है शरीर में, मैं करके भोग करता है, इसलिए आत्मा ही शरीर में तादात्म्य करके जीव बन करके भोक्ता हो जाता है सभी विषयों का। अब जितने भी भास रहा है, जैसे कि पर्दा हो और अनेक प्रकार के चित्र हो गई, तो इस चित्र को देखो उस चित्र को देखो, सभी चित्रों में एक जैसे पर्दा है ना, पर्दा को हटा दिया तो चित्र नहीं दिखता है, है? इसमें का जागृत में भी चित्र ही चल रहा है, चित्र चल रहा है, चित्र सपनों में भी चित्र चल रहा है और सुषुप्ति में भी चित्र है अविद्या। तो सारे के सारे जितने भी चित्र है, चाहे नाम हो चाहे रूप हो, सभी चित्रों का अधिष्ठान तो एक आत्मा ही है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक चौथा अर्थ लिख दिया कि यच्चास्य संततो भावः, भाव मतलब सत्ता, जिसकी सत्ता सभी कार्यों में है, सभी चित्रों में है, ऐसा जो पर्दा है उस पर्दा को बोलते हैं यहाँ पर आत्मा, है ना। आत्मा मतलब ये नहीं समझना कि दूसरा कोई है, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सच्चित आनंद स्वरूप हो गया ब्रह्म, वो है आत्मा, भाई ऐसा कोई आत्मा होता होगा हमारे से भिन्न। इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, है? परमात्मा का स्वरूप सच्चित आनंद है ऐसा जानने मात्र से पुण्य भले ही हो, लेकिन ज्ञान वास्तविक नहीं होगा। तो सच्चित आनंद स्वरूप जिसका है वो अपना स्वरूप है ऐसा जानना पड़ेगा, तो यहाँ तक क्लास पूरा होगा, वो ब्रह्म अपना स्वरूप है, ये अंतिम क्लास है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं वो स्वरूप अपना स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप अपना स्वरूप है, इति कीर्तते, ऐसा विद्वानों ने कहा है, ये बात लिखे हैं भगवान भाष्यकार भाष्य में। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।